ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में आधिकारिक तौर पर नामांकित किया गया है। कल रात रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के प्रतिनिधियों से बहुमत हासिल करने के बाद उनका नामांकन आधिकारिक हो गया। वर्ष 2016 में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने और 2020 में जो बाइडेन से हारने के बाद श्री ट्रंप का यह लगातार तीसरा नामांकन है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव इस वर्ष नवंबर में होने जा रहा है। श्री डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ओहायो के सेनेटर जेडी वेंस उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। वे एक पूर्व वेंचर कैपिटलिस्ट और आत्मकथा हिलबिली एलिजी के लेखक हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से मॉरिशस की दो दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। वे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री मॉरिशस के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों पर व्यापक चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और मॉरिशस के बीच संबंध प्रगाढ़ होंगे और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, सागर दृष्टिकोण और ग्लोबल साउथ के विचारों के महत्व को बल मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने से इनकार करने वाले अपने 3 जनवरी के निर्णय के विरुद्ध दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। समीक्षा याचिका पर विचार करने के बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। अपने पिछले आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट और हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे तीसरे पक्ष के संगठनों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों में भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड से जांच स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि देश ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI की मदद से 9 वर्ष में जो उपलब्धि हासिल की है उसे DPI के बिना हासिल करने में 50 वर्ष लग जाते। श्री अमिताभ कांत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के G20 कार्यबल की अंतिम रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटलीकरण के मामले में बहुत आगे है और रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI का इस्तेमाल होने से देश में वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन होता है। भारत का वस्तु और सेवा निर्यात जून महीने में 5.4% बढ़कर 65.47 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार अप्रैल जून तिमाही में समग्र निर्यात वृद्धि 8.6% बढ़कर 200.33 अरब डॉलर हो गई। व्यापारिक निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 2.55% की वृद्धि दर्ज की गई। तेलंगाना सरकार ने फसल ऋण माफी के लिए दिशा निर्देशों को सूचीबद्ध करने वाला आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार प्रत्येक किसान परिवार के लिए 2 लाख रुपए तक की छूट की सीमा तय होगी और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा कार्ड को किसान परिवार के रूप में नामित करने के लिए आधार के रूप में मान्यता दी जाएगी। मौसम विभाग ने आज देश के पश्चिमी तटीय भागों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, तटीय और दक्षिणी कर्नाटक, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। केरल में तेज बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में भूस्खलन और घर क्षतिग्रस्त होने के साथ व्यापक स्तर पर क्षति हुई है। पेड़ और बिजली के खंभे गिर जाने के साथ यातायात और बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में तेज बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में कम से कम 35 लोगों की मृत्यु हो गई और 250 लोग घायल हो गए। स्वीडिश ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के 32वें राउंड के मुकाबले में आज भारत के सुमित नागल का सामना स्वीडन के एलियास यमेर से होगा। पुरुष डबल्स में आज शाम सुमित नागल और पोलैंड के करोल रिजविक्की की जोड़ी का मुकाबला फ्रांस के अलेक्जेंडर मुलर और लुकावान एश से होगा। सुमित नागल ने सीजन में 2 चैलेंजर खिताब जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।